जब बुजुर्ग बादशाह ने दोनों को कमरे से बाहर आते देखा तो वो हड़बड़ाकर उनकी तरफ गए और उन्होंने सवाल किया, क्या तुम दोनों ठीक हो? वहीं उनकी आवाज में फिक्र महसूस कर ध्रुव मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। उसने एक नजर कमरे की तरफ देखा जहां से निकलता काला कोहरा धीरे धीरे छट गया, मगर कमरे के बाहर फैला जहरीला धुआं अभी भी बरकरार था। ध्रुव जानता था कि ये धुआं भले ही उस काले कोहरे से कम जहरीला था, मगर अकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए वो भी काफी भारी हो जाता। इस दौरान डॉक्टर परी ने भी ध्रुव के चेहरे पर छाई फिक्र को देखा, जिसके बाद उसने अपना हाथ आगे किया। तभी डॉक्टर परी के हाथ से एक बवंडर निकलने लगा जिसने आसपास के सारे जहरीले धुएं को अपने अंदर कर लिया। आखिर में वो बवंडर परी के शरीर में चला गया और वो जगह वापस पहले जैसी हो गई। ये देखकर बुजुर्ग बादशाह थोड़े हैरान हुए कि कैसे इतना सारा जहर डॉक्टर परी ने सिर्फ हाथ उठाकर अपने अंदर कर लिया। बुजुर्ग बादशाह कुछ पल गौर से डॉक्टर परी को देखते रहे, जिसके बाद उन्होंने सवाल किया,
डॉक्टर परी, क्या तुम्हारा रैंक बढ़ गया है?
इस पर डॉक्टर परी ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। वो भी जानती थी कि बुजुर्ग बादशाह इतने हैरान क्यों हो रहे थे, क्योंकि शक्ति पूर्वज रैंक में एक सितारा बढ़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। कुछ शक्ति पूर्वज तो ऐसे भी होते थे जो 5 से 7 साल की मेहनत के बाद भी एक सितारा हासिल करने में कामयाब नहीं होते थे। वही डॉक्टर परी को हामी भरते देख बुजुर्ग बादशाह ने अपना सिर हिलाते हुए कहा,
बाप रे, लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया हूँ। आजकल तो ये दुनिया नए लोगों की हो गई है।
वहीं बुजुर्ग बादशाह की बात पर डॉक्टर परी ने अपनी अंगूठी से एक बोतल बाहर निकाली और उसे बुजुर्ग बादशाह को पकड़ाते हुए अफसोस के साथ कहा, बुजुर्ग बादशाह, इस बोतल में जहर की दवा है, आप इसे उन सभी स्टूडेंट्स को दे दीजिएगा जो जहरीला धुआं अपने शरीर में ले चुके हैं। इस दवा को खाने के बाद कुछ दिनों में वो सभी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने वो बोतल हासिल की और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
ठीक है डॉक्टर परी, वैसे भी उन शैतानों को सबक मिलना चाहिए था कि वो आसपास की हरकतों से ज्यादा अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, नहीं तो हमेशा उनका ध्यान इस चीज पर रहेगा कि आसपास क्या हो रहा है।
इतने में ध्रुव ने शक्तियों के कवच को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग बादशाह, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, आप चाहें तो ये शक्तियों का पर्दा और स्पेस लॉक अलग कर सकते हैं। इस पर बुजुर्ग बादशाह ने ध्रुव से कहा,
हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी तुम्हारा भाई रक्षित अब तक तुम्हारे लिए परेशान हो गया होगा।
इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ लहराया जिसमें से शक्तियों की एक लहर निकली। फिर शक्तियों की उस लहर ने पूरे इलाके को हिला दिया और अगले ही पल उस पर चढ़ा कवच पूरी तरह से गायब हो गया। कवच के गायब होते ही अचानक से कुछ लोग हड़बड़ाकर अंदर आने लगे। जब उन्होंने ध्रुव और बाकी दोनों को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। जो लोग अंदर आए थे वो रक्षित, करिश्मा और बाकी कुछ लोग थे, मगर जिसका आना ध्रुव को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था वो था जाबाज जोशीले ग्रुप की टीना का। टीना ने वहां आते ही फिक्र के साथ ध्रुव की तरफ देखा और उससे कहा, ध्रुव भैया, इतनी मुश्किलों के बाद तो मुझे एक इंसान मिला है जो मेरी मदद कर सकता है, अगर आपको ही कुछ हो गया तो हमारी मदद कौन करेगा? वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और फिर उसने रक्षित से बात करते हुए टीना को जवाब दिया, फिक्र मत करो टीना, मैं अपने वादे से मुकरने वालों में से नहीं हूँ। वैसे हाँ, हमें मध्य इलाके का सफर कब शुरू करना है? ध्रुव के सवाल पर टीना एक पल के लिए कुछ सोचने लगी, जिसके बाद उसने कहा, अब से 2 महीने बाद। फिलहाल तो मैं एक दवा तैयार कर रही हूँ जिसे तैयार करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनकर ध्रुव भी कुछ सोचने लगा। वो जानता था कि बुजुर्ग गरुबा को शैतानी आत्मा में से अंदरूनी शक्तियां छीननी थी, और तो और ध्रुव ने सोचा था कि वो जाने से पहले आसमानी कठपुतली तकनीक भी सीख लेगा, मगर जो बात ध्रुव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी वो थी नागरानी हिनिसा के लिए कुदरती महाशक्ति गोली तैयार करना। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव भी नहीं जानता था कि उसे ये सब करने में कितना वक्त लगने वाला था और यहाँ से जाने के बाद उसे ये वक्त मिलता भी या नहीं। इतने में ध्रुव ने आ भरते हुए कुछ याद करने के बाद कहा, हम कहीं गोलियों के महामुकाबले के लिए देरी से तो नहीं पहुंचेंगे ना? ये सुनकर टीना ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, फिक्र मत करो आप, अभी भी उस महामुकाबले को 2 साल का वक्त बाकी है। इस दौरान आपके पास इतना वक्त रहेगा कि आप खुद को और ज्यादा काबिल बना पाओगे। ध्रुव को जब पता चला कि उसके पास काफी वक्त बाकी था अपने आप को और बेहतर हकीम बनाने में, तो उसने चैन की सांस ली। जाहिर सी बात है कि ध्रुव जल्दबाजी में मध्य इलाके के लिए नहीं निकलना चाहता था। वो अच्छी तरह जानता था कि गोलियों के महामुकाबले के लिए हर तरफ से काबिल हकीम आने वाले थे। ऐसे में हड़बड़ाकर वहां बिना काबिलियत के पहुंचना ध्रुव को बहुत भारी पड़ जाता। इतने में टीना ने ध्रुव को देखकर कहा, अब जो कि आप ठीक हो इसलिए मैं आपकी फिक्र करना छोड़ देती हूँ, मुझे भी जाकर कुछ जरूरी जड़ी बूटियों को मिलाना है, आप भी अपने कामों में लग जाओ, चलो तो फिर 2 महीनों बाद मिलते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई और ध्रुव उसे जाते हुए देखता रहा। वो समझ गया था कि अब उसे आने वाले 2 महीनों का पूरा फायदा उठाना था। अगले दिन ध्रुव एक बार फिर आग शक्ति टावर के नीचे बनी लावा की दुनिया में गया। वहां पहुंचकर उसे शैतानी आत्मा से अंदरूनी शक्तियां निकालने में बुजुर्ग गरुबा की मदद जो करनी थी, और तो और ध्रुव यहीं पर आसमानी कठपुतली तकनीक भी सीखने वाला था। भले ही थोड़ा वक्त क्यों ना गुजर गया था, लेकिन लावा की दुनिया आज भी उतनी खामोश थी जितनी कि वो पहले हुआ करती थी। कोई भी नहीं सोच सकता था कि इस खामोशी की गहराई में एक बहुत ही अजीब प्रजाति रहती थी जो शायद किसी बेशकीमती खजाने की रखवाली कर रही थी। वो खजाना इतना अनोखा था कि शायद इसकी खबर पूरे मार्कस को हिला कर रख देती। जब ध्रुव एक बार फिर उस गुफा में गया जो उसने उस जगह पर बनाई थी, तो उसकी अंगूठी में से बुजुर्ग गरुबा भी बाहर निकल आए। उस वक्त उनकी आत्मा काफी धुंधली नजर आ रही थी। जाहिर सी बात है कि गहरी नींद से जागने के बाद अब गरुबा की हालत पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। तभी बुजुर्ग गरुबा ने अपनी हालत देखकर ध्रुव से कहा, ध्रुव मुझे नहीं लगता कि मैं मौजूदा हालत में उस शैतानी आत्मा को दबाकर उससे अंदरूनी शक्तियां छीन पाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस पर ध्रुव ने उन्हें जवाब दिया, बुजुर्ग गरुबा आप बेफिक्र हो जाइए, मुझसे जो भी मदद करते बनेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग गरुबा ने ध्रुव को बताया, और हाँ मुझे कुछ वक्त के लिए दिल बहार दिव्य रोशनी उधार में चाहिए। दरअसल मैं उसकी मदद से इस शैतानी आत्मा को काबू करने में कामयाब हो पाऊंगा। वहीं बुजुर्ग गरुबा की बात सुनकर ध्रुव को जरा भी झिझक नहीं हुई, बल्कि उसने तो तुरंत अपने हाथों में वो अदृश्य दिल बहार दिव्य रोशनी चला दी। जब बुजुर्ग गरुबा ने देखा कि ध्रुव बेझिझक होकर अपनी दिल बहार दिव्य रोशनी उन्हें पकड़ाने को तैयार हो गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के एक बात तो मैं कहूंगा, तुम्हारा यह अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलने वाला। इस पर ध्रुव मुस्कुराने लगा, मगर उसने बुजुर्ग गरुबा से कुछ नहीं कहा। अब जो कि ध्रुव कुछ वक्त से बुजुर्ग गरुबा को जान रहा था, तो वो समझ गया था कि गरुबा छोटी छोटी मदद की भी अपने दिल में कितनी अहमियत रखते थे। फिर बुजुर्ग गरुबा ने अपना पूरा ध्यान ध्रुव की दिव्य रोशनी पर किया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस दिव्य रोशनी को अपने पास खींचना शुरू किया। अगले पल ध्रुव की अंगूठी कांपने लगी और उसमें से एक बेहद ताकतवर और खतरनाक आत्मा बाहर निकलने लगी। इस वक्त उस अंगूठी में से लाल रंग का कोहरा निकलकर हर तरफ फैल गया था। धीरे धीरे वो कोहरा एक खतरनाक से दिखने वाले लाल रंग के इंसान में बदलने लगा। वो इंसान उस गुफा में आया ही था कि एक अजीब सी बदबू हर तरफ फैलने लगी, मगर गुफा में मौजूद बाकी दोनों लोग भी किसी मायने में मामूली नहीं थे। इसलिए चाहे उस खतरनाक शैतान के साथ कितनी भी बुरी शक्तियां क्यों ना जुड़ी हुई थी, ध्रुव और बुजुर्ग गरुबा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आत्मा ने बाहर निकलते ही ध्रुव और बुजुर्ग गरुबा को देखा। उसे याद था कि पिछली बार इन दोनों ने उसे शक्तियों के इस्तेमाल से कैद कर लिया था, इसलिए इस बार वो तुरंत उन पर हमला नहीं करने लगा, बल्कि वो तो लाल रंग की परछाई में बदलकर सीधे उस गुफा से बाहर भागने लगा। उसके इस अंदाज को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहीं उसे भागने की कोशिश करते देख बुजुर्ग गरुबा ने उससे कहा, कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि हमसे बचकर निकलना इतना आसान होगा? ये कहते उन्होंने अपने हाथों में जलती दिल बहार दिव्य रोशनी को पूरी गुफा में फैला दिया। एक तरह से बाहर निकलने के रास्ते पर फिलहाल दिल बहार दिव्य रोशनी का एक जाल फैला हुआ था, जिसके चलते वो लाल रंग की परछाई गुफा से बाहर नहीं निकल पाती। वहीं उस परछाई ने जब देखा कि गुफा की शुरुआत में अदृश्य रोशनी महसूस होने लगी, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आने लगा। वैसे तो उस शैतानी आत्मा में समझ की कमी थी, लेकिन वो इतना तो पता लगा ही पा रहा था कि सामने महसूस होती चीज जरूर उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। फिर एक अजीब सी चीख के साथ वो शैतानी आत्मा तुरंत रुक गई। जब वो दिल बहार दिव्य रोशनी के जंजाल से थोड़ी दूरी पर थी, सही जगह पर रुकने के बाद भी इससे पहले कि आत्मा खुशी मनाती, बुजुर्ग गरुबा ने अपने हाथ लहराने शुरू कर दिए। उनके ऐसा करते ही गुफा की शुरुआत में जो दिल बहार दिव्य रोशनी का जाल दिख रहा था, वो किसी भूखे भेड़िए की तरह सीधे आगे बढ़ने लगा। दिल बहार दिव्य रोशनी के उस भेड़िए ने शैतानी आत्मा को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे वो एक कदम भी यहाँ वहां नहीं हो पा रही थी। वहीं दिव्य रोशनी के इतना करीब आते ही उस शैतानी आत्मा का शरीर गलने लगा, उसमें से सफेद धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। इस जलन को महसूस कर वो शैतानी आत्मा कैसे भी करके बाहर निकलने की कोशिश करती रही। इस दौरान उस शैतानी आत्मा से लगातार लाल रंग का गाढ़ा कोहरा निकलता जा रहा था। वो कोहरा बाहर निकलते हुए दिव्य रोशनी से टकरा रहा था और वो दोनों एक दूसरे को खत्म करने लगे। जब बुजुर्ग गरुबा ने देखा कि वो शैतानी आत्मा कैसे अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर उनकी दिव्य रोशनी को खत्म कर रही थी, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेरहमी झलकने लगी। फिर उन्होंने तुरंत अपने हाथ की सील बदलनी शुरू की और वो दिव्य रोशनी का जाल धीरे धीरे छोटा होने लगा। इसी के साथ बुजुर्ग गरुबा ने अपनी दिव्य रोशनी की गर्माहट बढ़ा दी और जाल के साथ साथ वो शैतानी आत्मा भी छोटी होने लगी। तभी बुजुर्ग गरुबा ने चिल्लाकर ध्रुव से कहा, ध्रुव जल्द से जल्द दिव्य रोशनी की ताकत बढ़ाओ। वहीं पास ही खड़ा ध्रुव, जो अब तक इंतजार कर रहा था बुजुर्ग गरुबा के कुछ कहने का, अचानक से तैयार हो गया। अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाते हुए ढेर सारी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी। आखिर में वो सभी शक्तियां उस बड़े से जाल में आ गईं, जिससे वो जाल और ज्यादा ताकतवर होने लगा। दूसरी तरफ उस जाल की रोशनी के ताकतवर होते ही अचानक से उस आत्मा की चीखें निकलने लगी। वो लाख कोशिशें कर रही थी छूटने की, मगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। ये देखकर बुजुर्ग गरुबा ने ध्रुव से कहा, इसी तरह उसे मजबूत करते रहो ध्रुव। ध्रुव के चेहरे पर इस वक्त जरा भी फिक्र नहीं दिख रही थी। वो लगातार अपनी शक्तियों को निकालकर उस जाल को मजबूत करता जा रहा था। आखिर में जब उसने ढेर सारी शक्तियां उसमें भर दी तो गुफा की गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ उस शैतानी आत्मा का लाल रंग का कोहरा पूरी तरह से गायब होने लगा। जब बुजुर्ग गरुबा ने देखा कि वो आत्मा कमजोर हो गई तो उन्होंने चैन की सांस लेनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथ की सील बदलते हुए उस जाल को पूरी तरह से गायब कर दिया। आखिर में वो जाल एक बड़ी सी जादुई कढ़ाई में बदल गया जिसके अंदर धधकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। उस जादुई कढ़ाई को तैयार होते देख ध्रुव के चेहरे पर भी हैरानी नजर आने लगी। वो देख रहा था कि कैसे बुजुर्ग गरुबा उस जादुई कढ़ाई को इस्तेमाल कर रहे थे। वाकई वो एक ताकतवर महाशक्ति पूर्वज कहलाने के काबिल थे। जिस तरह वो दलबहार दिव्य रोशनी को काबू कर पा रहे थे ध्रुव उससे कोसों दूर था। वहीं उस कढ़ाई की गर्माहट बढ़ती गई और वो शैतानी आत्मा का रंग फीका पड़ने लगा। ध्रुव समझ रहा था कि जब उसका लाल रंग पूरी तरह से गायब हो जाता तो वो आत्मा एक शुद्ध आत्मा बन जाती जिसमें बहुत अंदरूनी शक्ति होती, लेकिन किसी आत्मा को इस तरह शुद्ध करना काफी धीमा काम था। ध्रुव समझ रहा था कि इस रफ्तार से शायद उन्हें 3 से 4 दिन लग जाते उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए। तभी बुजुर्ग गरुबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जिसके साथ वो उस कढ़ाई को देखते रहे। फिर उन्होंने इसी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, चलो ठीक है ध्रुव, अब तुम्हें इस जादुई कढ़ाई को बरकरार रखने में मेरी मदद करनी होगी। देखो मैं फिलहाल इस कढ़ाई को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए काम तुम्हें ही करना होगा। और बुजुर्ग गरुबा की बात पर ध्रुव उसके लिए राजी होते हुए कहने लगा, फिक्र मत कीजिए बुजुर्ग गरुबा, आप आराम कीजिए, मैं इस कढ़ाई को देख लेता हूँ। ध्रुव को फिलहाल सिर्फ उस कढ़ाई में शक्तियां भरनी थी जिससे दिलबहार दिव्य रोशनी बढ़ती जाती। ऐसे में ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां भी खत्म नहीं होती। जब बुजुर्ग गरुबा ने सुना कि ध्रुव उनकी बात मानने के लिए राजी हो गया तो वो मुस्कुराते हुए अपनी आंख बंद करने लगे। ऐसा करते हुए वो ट्रेनिंग के लिए बैठने लगे ताकि अपनी खोई हुई शक्तियां वापस हासिल कर सकें। अगले ही पल जादुई कढ़ाई में अंदरूनी शक्ति आने लगी जो धीरे धीरे उस आत्मा को शुद्ध करने का काम करती रही। इस दौरान ध्रुव ने और बहुत सी शक्तियां उस कढ़ाई में भर दी और देखा कि बुजुर्ग गरुबा ट्रेनिंग करने लगे। आखिर में उसने अपने पास से एक भूरे रंग का कागज बाहर निकाला जो उसने ज्वाला दल के तहखाने से हासिल किया था, जिसमें थी आसमानी कठपुतली तकनीक। तो आखिर कैसे सीख पाएगा ध्रुव आसमानी कठपुतली तकनीक को, जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।